ओम शांति। तो जनवरी मास में सबका यही पुरुषार्थ रहता है, हमको बाप समान बनना है। आप में से 15 साल के ऊपर कितने ज्ञान में, जरा हाथ उठाना। 10 से 15, 5 से 10, 1 से 5, चलो 5 से 10 मैक्सिमम है। तो चाहे कोई 1 साल का है, चाहे कोई 1 मास का है, लक्ष्य सभी का एक ही है ना, बाप समान बनना। एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ाने वाला है, परंतु धारणा करने वाले नंबर वाइज है। तो यहां से मैक्सिमम फायदा लेके जाना कि सभी मौन में है ना, कौन है जो मौन में रहता है, जरा हाथ उठाना। बस 2-4। और कौन है जिन्होंने मोबाइल फोन रख दिया है बाजू में, वो भी थोड़े, बाकी सब ने मोबाइल चालू रखा है। हाँ, जो हाथ नहीं उठाया माना चालू है, क्योंकि कोई भी नहीं होगा जिसके पास मोबाइल नहीं है। ऐसा है कोई जिन्होंने मोबाइल नहीं लाया है? ठीक है, मतलब जितना मौन में रहेंगे उतना अपने में शक्ति भरेंगे। ब्रह्मा बाबा के जमाने में मोबाइल तो क्या, परंतु लैंडलाइन भी हम लोग मुश्किल यूज करते थे। क्योंकि हम 71 में विदेश गए, उस समय भी क्या होता था, थोड़ी ही लाइन होती थी, तो हम लोगों को फोन करना होता था तो यहाँ के अमृत वेले में करना पड़ता था, तब लाइन मिलती थी। अभी तो क्या है, मोबाइल, सारा दिन, उसमें भी जो यंग लोग है ना, सारा दिन मोबाइल। तो इसलिए मन का भी मौन, वाचा का भी मौन रखो। बाबा की ये विशेषता थी, जब भी फ्री बैठते थे ना, विचार सागर मंथन में बिजी रहते थे, अंतर्मुख होकर बाबा की याद में रहते थे, और जब भी किसको मिलते थे कुछ न कुछ आशीर्वाद देते रहते थे, वरदानी बोल। जीवन में बैलेंस था, और चलते फिरते जैसे फरिश्ता। इसलिए आजकल की मुरलियों में क्या बाबा विशेष ध्यान खिंचवाते हैं, अपने को आत्मा समझ, सामने वाली व्यक्ति को आत्मा रूप में देखो। और चलते फिरते शरीर का भान भूलकर लाइट होकर चलो। गीत सुना ना, एक फरिश्ता आया। समझते हो ये हमारे लिए गायन है या और किस कोई फरिश्ता आया है? तो अपने आप को फरिश्ता समझ कर चलो। कर्म तो करना ही है। मेजोरिटी आप गृहस्थी हो, चाहे गृहस्थी हो चाहे सेंटर में रहने वाली टीचर्स हो, सबको अपना कर्तव्य करना है। परंतु कर्तव्य करते ये ध्यान में रहे कि हम फरिश्ता हैं। बाबा की याद में हम कर्म योगी निरंतर योगी का पाठ पक्का हो। और कर्म करते अलौकिक संबंध रहे तो कर्म के बंधन में नहीं आएंगे। क्योंकि जब मेरा कहा बंधन हो गया, चाहे मेरा शरीर है चाहे मेरा परिवार है चाहे मेरा घर है चाहे मेरा स्टूडेंट है चाहे मेरा सेंटर है, मेरा कहा माना बंधन लगाव हो गया ना, मेरे में लगाव हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में बदलो, सब कुछ तेरा बाबा का, सब कुछ बाबा का, मेरा कुछ नहीं। तो जब हम बाबा के बने मर गए। लौकिक से मर गए, पुराने संस्कारों से मर गए, मर्जीवा हमारा नया जन्म हो गया। तो जितना आत्मभान में रहेंगे, स्वमान में रहेंगे, ऊंची स्थिति में रहेंगे और अपनी अनादि स्वरूप में स्थित रहेंगे। हमारा अनादि स्वरूप है आत्मा, आदि स्वरूप है देवता, तो अनादि स्वरूप में रहना है। और एकांत प्रिय होकर रहना है। जैसे भी टाइम मिले बाबा की याद में। आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे टाइम मिला पहले फोन खोलते हैं ना या टीवी खोलते हैं, क्या हो रहा है दुनिया में, फेसबुक सोशल मीडिया व्हाट्सएप। जब तक फ्री है तो समझते हैं उसका उपयोग करने में। तो आज भी बाबा ने कहा देवता बनने वाले हैं फालतू विचार सागर मंथन नहीं करते, ज्ञान का विचार सागर मंथन कर रहा हूं। बाबा की याद में रहना है, शक्तियों को जमा करना है। सिर्फ यहां भट्टी में आए इतने समय नहीं, घर में भी रहते ये लक्ष्य रहे। समय थोड़ा है और इसमें भी जो देरी से आए हैं, समय थोड़ा है, थोड़े समय में हमें बहुत जमा करना है। इसलिए एक सेकंड, एक संकल्प वेस्ट नहीं करना है, तब समर्थ बनेंगे। जैसे जैसे हम कर्मातीत अवस्था के नजदीक भोज पहुंचेंगे, हमें न शरीर आकर्षित करेगा, न शरीर के बंधन कोई रहेंगे, न संबंधियों के या अलौकिक के परिवार का कोई बंधन रहेगा। क्योंकि ज्ञान के पहले हमारा तो बहुत बंधन थे, परिवार का बंधन, गुरु का बंधन, भक्ति का बंधन और सबसे बड़ा शरीर का बंधन। शरीर ठीक नहीं, योग नहीं लगता, दर्द है, दर्द है, दर्द है, क्या खावे क्या नहीं खावे, कौन सी दवा लेवे, किस डॉक्टर के पास जावे, सारा दिन उसके संकल्प चलते रहे। अभी जैसे जैसे कर्मातीत के नजदीक पहुंचेंगे, शरीर अपना काम करता है, मन, शरीर मन को नहीं खींचता है, बुद्धि को नहीं खींचेगा। हमने दादी प्रकाशमणि को देखा था, कितनी भी बीमार थी, बेहोश भी रहती थी, परंतु लास्ट में जब शरीर भी छोड़ा ना, इतनी योग युक्त दृष्टि जो दी, जो अंत में जो छुट्टी लेने आए थे ना, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि दादी की दृष्टि इतनी पावरफुल थी। तो समझो योग की अवस्था, चाहे शरीर क्या भी हो कैसा भी हो, कर्म भोग को कर्म योग में वो लोग बदल लेते हैं। और कोई भी चीज आकर्षित नहीं करेंगे, वैराग्य, क्योंकि आजकल अच्छे अच्छे साधन निकलते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, कलर टीवी, बड़ा स्क्रीन, मोबाइल फोन, 4G, 5G, तो सोचते हैं कि हमको तो लेटेस्ट मॉडल के साधन चाहिए। जिसको कार का शौक होगा, देखते रहेंगे कौन सा अच्छा मॉडल है, कौन सा कलर अच्छा है। जिसको मोटर बाइक का शौक होगा, वो मोटर बाइक को देखता रहेगा। परंतु जैसे जैसे हमारी स्थिति ऊंची आती जाएगी, ये सब साधन वैभव आकर्षित नहीं करेंगे। उसमें समय नहीं लगाएंगे। देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, यहां कितना विस्तार किया, ट्रेनिंग सेंटर नया बनाया, खुद पुराने मकान में रहे, खुद अपना मकान अच्छा नहीं बनाया, एरोप्लेन बनाया, ये बनाया, परंतु खुद पुराने मकान में रहे। और किसी से लगाव नहीं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, एक बाप का सहारा, बाप से सहयोग ले ले, दुनिया सबसे सहयोग लो, ब्राह्मण परिवार, लौकिक आईपी वीआईपी सहयोग लो, पर उसको आधार नहीं बनाना, एक बाप का आधार। अब ब्रह्मा बाबा के हिस्ट्री में देखते हैं, 400 बच्चे थे, बेगरी पार्ट था, खाने के लिए कभी कभी गेहूं नहीं, आटा नहीं, पैसा नहीं, बाबा को कभी चिंता नहीं हुई। यही बुद्धि में रहता था, शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा चलाएगा। तो न डर था न चिंता थी। आजकल तो ब्राह्मणों को भी डर और चिंता हो गई है ना, कोरोना से डर है, और जिनकी नौकरी नहीं है, क्योंकि कईयों की नौकरी गई, कईयों के धंधे बंद हो गए, तो चिंता होती है बच्चों को क्या खिलाएंगे। परंतु ब्रह्मा बाबा को एक दिन भी चिंता नहीं। रोज सवेरे बेगरी पार्ट था ना, यहां आबू के पहाड़ी पर ले जाते थे और बेरी फल खिलाते रहते थे, नाश्ता हो गया। उन दिनों में दिल्ली में वगैरह में जब सेंटर खुला, जगदीश भाई अपना अनुभव सुनाते थे कि शॉपिंग करने जाते थे, सस्ते थे, सस्ता आलू ले आते थे, छोटे 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 आलू सस्ते होते थे, ले आते थे। दादी अब जानकी भी अपना अनुभव सुनाती थी, बेगरी पार्क में बंबई में माइलों तक पैदल जाती थी कि बस के लिए एक दो आना खर्च न करना पड़े, और चना और केला खा के दिन गुजारते थे। पर कभी फीलिंग नहीं होता था कि हमने त्याग किया है, कुछ मिलता भी था मधोकरी, किसी को घी या अनाज, स्पेशली घी मिलता था ना, तो मधुबन भेज देते थे कि यज्ञ में यज्ञवत्स खाए। तो चिंता नहीं, डर नहीं, निश्चय था कि बाबा दाल रोटी खिलाएगा, भूख मरने का दिन नहीं आएगा। तो कर्मातीत माना कर्मों का हिसाब किताब पूरा। मतलब कोई गाली देता है, ग्लानी करता है, लेकिन दुख नहीं फील होता। जैसे बाबा कहते हैं ना, हियर नो इविल। गाली दिया एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दी, ग्लानी की एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी, दुख क्यों हो? जब दिल में ले हुए ना तब दुख हुए, दिल में डालो दुख क्यों होगा? मतलब हिसाब किताब पूरा हो, दुख नहीं। तो जैसे जैसे कर्मातीत अवस्था के नजदीक होते जाएंगे, साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, आपके द्वारा औरों को अपने इष्ट देव का साक्षात्कार होगा, फरिश्तों का साक्षात्कार होगा। क्योंकि भारत में देवी देवताओं के भगत बहुत हैं, तो आपके भक्तों को अपने इष्ट देव का साक्षात्कार होगा। तो कर्मेंद्रियों का आधार लो और परे हो जाओ, अभ्यास करो। जैसे बाबा कहते हैं ना कि अपने मन को ऑर्डर दो, अभी साकार दुनिया में है, अभी अभी सूक्ष्म वतन में ले जाओ, अभी अभी मूल वतन में ले जाओ, जहां ऑर्डर करो चले जाओ। तो इसलिए कर्म इंद्रिय का आधार भी लेना पड़ता है, परंतु परे भी हो जाना उपरा। और स्थिति अचल अडोल रहेंगी, साक्षी बनकर देखते रहेंगे, उपराम होके देखते रहेंगे। जैसे ऊपर की स्थिति है ना, ऊपर से देखेंगे तो नीचे कुछ भी होता है उसका असर नहीं होगा। यदि हम इस दुनिया पर बुद्धि का रूपी पांव रखेंगे तो क्या होगा? असर होंगी, प्रभावित हो जाएंगे। कभी नाराज नहीं होंगे। बाबा आजकल कहते हैं नशे में रहो, खुश रहो और नशे में रहो। हम कौन है, किसके बच्चे हैं, पढ़ाने वाला कौन है, हम क्या बनने वाले हैं, जितनी स्मृति रहेंगी उतना नशा और खुशी रहेंगे। और जब खुशी का खजाना होगा तो क्या है, अपसेट नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे। तो संबंधियों के साथ रहना है, तोड़ निभाना है। हम सन्यासी नहीं, घर बार छोड़ना नहीं है, परंतु साथ में रहते भी न्यारा कमल पुष्प समान रहना है। और जैसे जैसे हम अवस्था के नजदीक होंगे कर्मातीत, भूख प्यास, नींद, कोई भी बात हमें आकर्षित नहीं करेंगे। अभी तो क्या है, भोजन का टाइम होता है तो संयोग नहीं लगता, हाँ थकावट है, नींद आती है, जुटका खाते हैं, योग नहीं लगता। परंतु शुरू में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, रात रात भर भट्टियां करते थे, कराते थे बाबा। बाबा दृष्टि देते थे और सब यज्ञवत दृष्टि लेते बैठे रहते थे सारी रात, और किसी को नींद आती थी तो क्या करते थे, सरसों का तेल आंख में डालते थे या मिर्ची का पाउडर डालते थे कि नींद उड़ जाए। तो आप लोग तो दिन में ही भट्टियां करते हो, रात भर नहीं करते हैं ना। तो उन दिनों में तो बस ज्ञान और योग के सिवाय और कुछ था नहीं। अभी तो सेवा भी करनी है, घर बार भी संभालना है, नौकरी धंधा भी करना है, तो इसलिए दिन रात ज्ञान योग नहीं करते। पर उन दिनों में तो बस ज्ञान और योग के सिवाय कुछ नहीं था। और बाबा को भी देखते थे, जब भी देखते थे, 93 वर्ष की उम्र में भी सवेरे 4 बजे से लेकर रात को 10:30 तक बिजी रहते, थकावट का नाम ही नहीं था। कभी कभी लच्छू दादी देखती थी कि बाबा थोड़े थके हैं, क्योंकि बाबा की दिनचर्या फिक्स थी, तो समझो 10 बजे तक पोस्ट लिखकर फिर झोंपड़ी में बैठते थे। तो झोंपड़ी में बैठते थे तो पर्सनली मिलते थे, तो कभी लच्छू दादी देखती थी, सेक्रेटरी थी ना, ब्राह्मणी थी, तो देखती थी कि बाबा को थोड़ी थकावट है, पूछती थी बाबा लाइन बंद करें, अभी पर्सनल मिलना बंद करें। नहीं नहीं, एक संतरे की फाड़ लेकर चूस कर मिनट में फ्रेश हो जाते थे। तो समझो इतनी आयु में भी अथक हो के सेवा और सेवा का प्लान, खुद सेवा करने नहीं जाते थे पर मनन मंथन चलता था क्या सेवा करें। अभी भी आप मुरली में सुनते होंगे ना, प्रदर्शनी में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मंदिरों में यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, पर्चों में ये छपाना चाहिए, वो छपाना चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए। तो बाबा का मंथन चलता रहता था। और यदि दादियां कॉन्फ्रेंस में जाती थी तो बाबा टॉपिक पर भाषण के लिए पॉइंट्स भी भेजता रहता था पत्र द्वारा के इस विषय पर भाषण करना। एक भी दिन मुरली मिस नहीं किए। तो पढ़ाई का शौक, पढ़ाने का शौक, और फिर टीचर के रूप में बाबा चाहते थे कि स्टूडेंट मेरे पहले पहुंच जाए। तो आप देखते होंगे उन दिनों में मुरली के 5 मिनट पहले देखेंगे मधुबन के आंगन में सब दौड़ते होंगे, कि बाबा के पहले पहुंच जाए, नहीं तो बाबा नोट कर देंगे और पूछेंगे क्यों देरी हो गई। और उन दिनों में हिस्ट्री हॉल में एक भी सोफा नहीं था, सब नीचे बैठते थे। और किसी को दीवार को टेक कर नहीं बैठना है, बाबा खुद भी गद्दी पर बैठता था, ऐसे बैठता था। कहता था बूढ़े हो गए जो टेका की जरूरत है, तो कोई सोफा पर नहीं, अभी तो सब बूढ़े हो गए हैं, सोफा के बिगड़ नहीं चलता है। ये छोटा बच्चा भी सोफा पर बैठ गया उसको नीचे भेजा, फिर ऊपर जाकर बैठ गया। तो जब बाबा के बने भक्ति में भी हम गाते रहे, भगवान तुम आएंगा तेरे परवारी जाऊंगी बलिहार जाऊंगी। बाबा कहते हैं अभी बाबा पर बलिहार जाओ, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं तो लगाओ भी नहीं, मेरा है तो लगाओ, सब कुछ तेरा बाबा तेरा। और जितना जितना हम ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे कर्मातीत, तो सबको फील होगा ये हमारे हैं। जैसे आज भी हम कहते हैं मेरा बाबा, जिन्होंने देखा भी नहीं है बाबा को वो भी कहते हैं मेरा बाबा। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में दादी प्रकाशमणि ने भाषण किया पब्लिक में, तो अंत में एक ऑस्ट्रेलियन भाई मुझे कहते हैं ऐसे फील होता है जैसे दादी हमारी है। तो जैसे बाबा को सब फील करते हैं हमारे हैं, ऐसे दीदी दादी को भी सब फील करते थे हमारी है। तो जैसे हम भी कर्मातीत अवस्था के पहुंचेंगे, सब कहेंगे ये तो हमारी बहन जी है, हमारे भाई है। तो अपनेपन की फीलिंग आएंगी। और अभी अभ्यास ऐसे करना है कि जैसे कछुआ है, उसको अपने अंग को समेटने में क्या लगता है, एक सेकंड लगता है, ऐसे हमको भी मन बुद्धि कर्मेंद्रियों को समेट लेना बाबा की तरफ एकाग्र करना। देखना है कितना टाइम लगता है, मन को योग में एकाग्र करने में टाइम ना लगे अभ्यास से, क्योंकि अंतमते सोगते, अंत में यदि मन इधर उधर से नहीं पकड़ के बाबा में लगाया तो क्या होगा। जिसको याद करेंगे उसके पास जन्म लेंगे, उसके साथ हिसाब किताब बनाएंगे। तो इसलिए हमको कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनना है, तब कर्मातीत बनेंगे और जगत जीत बनेंगे। तो अभी अभ्यास क्या करना है, जो बाबा की अंतिम स्टेज थी, निराकारी, निरंकारी, निर्विकार। तो आत्मभान में तो रहना है, पर साथ साथ अपनी ऊंची स्टेज बनानी है अशरीरी, चलते फिरते अशरीरी। जब योग में बैठते हो, बिंदी बनकर बिंदी को याद करो, अथवा बीज रूप स्थिति हो, निरंकार निराकार। तो अभी ये भी अभ्यास करना है, बीज रूप स्थिति निरंकार निराकार। तो सेवा भी करो, परंतु सेवा करते भी उपराम रहो, बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि हमको तो बस बाबा की याद में रहना है, घर को नहीं देखना है, बच्चों को नहीं देखना है। कई और कई है एकदम एक्सट्रीम में जाते हैं, कोई है सारा दिन बच्चा घर सफाई ये वो करते रहते, कोई है कहेंगे हम तो बस बाबा के बन गए। ये नहीं, बाबा हमेशा कहते हैं घर को भी संभालो, बच्चों को भी संभालो, अपना पढ़ाई भी करो अलौकिक, योग भी करो, सेवा भी करो। आजकल तो कहते हैं माताएं हैं नौकरानी को बच्चों को सौंप कर सेवा में चले जाओ, मतलब परिस्थिति अनुसार बड़ों की छुट्टी लेकर निमित्त टीचर की सेवा में भी लग जाओ। तो अपने को ट्रस्टी समझो, निमित्त समझो, और सेवा करते रहो। तो मेन बात अभी ये हमको ध्यान में रखना है कि बंधन बढ़ाने नहीं है। लौकिक के साथ जो संबंध है, लेन देन करके अपने बंधन नहीं बंधाने हैं, बंधन तोड़ने हैं। तो जितना जितना हम तपस्या करेंगे, पुण्य का खाता बनाएंगे, तो पिछला पाप का खाता खत्म और लाइट रहना है। क्योंकि जब मेरी जिम्मेवारी समझेंगे भारी हो जाएंगे, जब शरीर का भान होगा भारी हो जाएंगे, और कर्म बंधन होंगे भारी हो जाएंगे। इसलिए पाप कर्मों का खाता पूरा करना है तो लाइट हो जाएंगे, आत्मभान में रहेंगे लाइट रहेंगे, और जितना लाइट रहेंगे उड़ना सहज हो जाएगा, जितना हैवी रहेंगे तो नीचे खींच होंगी। तो ये देखना है कि कोई भी चीज हमें नीचे खींच ना ले आ, नीचे की कोई भी आकर्षण ना हो दुनिया की। क्योंकि बुद्धि में है कल जाकर हमारे पास सब कुछ होगा, वैभव विलास खाना पीना कपड़े आभूषण अलंकार सब कुछ होगा। ये कलयुग दुनिया में क्या है, जो भी है विनाशी टेम्पररी। आकर्षित करने वाली तो बहुत चीजें हैं परंतु ये सब टेम्पररी। तो जितना वैराग्य होगा त्याग सहज हो जाएगा, त्याग होगा तपस्या सहज हो जाएंगी, और जो बाप समान बनना है बन जाएंगे। और बाबा कहते हैं लास्ट फास्ट फर्स्ट, तो जो लास्ट भी आए हैं ना फास्ट जा सकते हैं, फर्स्ट आ सकते हैं। तो इसलिए अपने में उम्मीद रखकर तीव्र पुरुषार्थ करना है। आज भी बाबा कहता है ना, था ना, किसी में उम्मीद नहीं हारो, अधम ते अधम का मैं उद्धार करने आया हूं। तो बाबा तो हम बच्चों का उद्धार करने आया है, अभी हम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करके ऐसा अपने आप को बाप समान बनाना, लक्ष्य बुद्धि में रहे, ढीला नहीं रहे, क्योंगा कहेंगा हम तो नए हैं, हम तो छोटे हैं, नहीं हम तो गृहस्थी है, नहीं हमको बनना है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। ये लक्ष्य ऊंचा रखकर ऐसा पुरुषार्थ करना। अच्छा चलो 5 मिनट बाबा की याद में।